अपनी हालत छिपाए जाता हूँ, बेमहल मुस्कुराए जाता हूँ। खुद हूँ महजू मगर जमाने को बेतहाशा हंसाए जाता हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ आपका दोस्त फहीम मस्को। और जैसा कि जनाब आप जानते हैं कि रेडियो मानव रचना हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी महफिल सजाता रहता है कि जिस महफिल में हम अदब की बातें करते हैं, साहित्य का जिक्र होता है, और इस महफिल में हमेशा कोई ना कोई शख्सियत हमारे साथ जुड़ी होती है और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे एक मेहमान हैं जो इस महफिल में आ चुके हैं, उनका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं इस खूबसूरत सी महफिल में, और उनकी ज़ुबानी जानेंगे उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में, और जानेंगे कि उनके अंदर वो कौन कौन से फ़न हैं कि जिनकी वजह से उन्होंने बेशुमार मकबूलियत हासिल की है। लेकिन उनके बारे में बताने से पहले सबसे पहले एक याद आता है उन्हीं का लिखा शेर। फरमाते हैं हमारे मेहमान के, हज़ार बस्तियां मैंने बसा के रख दी हैं, हज़ार बस्तियां मैंने बसा के रख दी हैं, तमाम उम्र खुदाया मैं घर बना ना सका, और करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे, करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे, एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा ना सका। तो ये अंदाज़ है आज के हमारे मेहमान। चलिए भाई, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा और बताए देता हूँ कि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम क्या है। नाम है उनका एकदम, कहते हैं ना, रोशनी की तरह चमकता हुआ नाम है ज्योति संघ। अब इस नाम के साथ साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है वो तो बताएंगे वो खुद ही, लेकिन फिलहाल आइए हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। तो ज्योति संघ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
शुक्रिया, बहुत बहुत
शुक्रिया। के बाद बात आ जाती है अब आपकी ज़िंदगी के बारे में। देखिए, और हमारे जितने भी दोस्त हैं इस वक्त बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ऐसी महफिलों का कि जिसमें ऐसी शख्सियतें जुड़ी होती हैं कि जो एक अदब से अच्छा खासा ताल्लुक़ रखती हैं। और जैसा कि मैंने आपका लिखा हुआ शेर अपने दोस्तों को सुनाया है, उसी से अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपकी ज़ुबानी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम आपके उस दौर में ले चलें आपको कि जो एक बचपन का दौर होता है और उस बचपन की मीठी मीठी यादें हुआ करती हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में।
बचपन, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है।
क्या बात है,
कमियाँ हों या सब कुछ हो, लेकिन बचपन की एक अपनी एक खुशबू है, एक रंग है, और तमाम ज़िंदगी इंसान अगर उन्हें याद रखता है अपने जहन में, जब भी कुछ उभरता है तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी दुनिया सिमट के आंखों के सामने आ गई। ऐसा ही एक बचपन खुदा ने मुझे भी दिया
जी।
ये बात अलग है कि हम, मेरे वालदेन, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आए।
अच्छा।
उजड़ा हुआ शहर था।
हाँ।
कोई घर नहीं था जिसमें कुछ गम ना हो। हादसे हुए, मौतें हुई, सब कुछ लुट गया, लेकिन उसके बावजूद सुबह सरहद से आए हुए लोग जिस तरह इन्होंने अपने आप को समेटा, जिस तरह इन्होंने मुसीबतों का सामना किया, जिस तरह इन्होंने अपने आप को फिर खड़ा किया, मेरा ख्याल है सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक ये खूबसूरत एक एग्जाम्पल है।
क्या बात है।
सोचिए, 2 रुपया रोज पे मजदूरी करने वाले लोग, रहने के लिए घर नहीं, एक मामूली सा टेंट
जी,
चलती हुई आंधियां, गर्म हवाएं, ये कुछ था फरीदाबाद का एक असली नक्शा।
अच्छा।
जहां जो 29 सेक्टर है, यहां पे पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को, सूबा सरहद से आए रिफ्यूजियों को बसाया गया
जी।
सरकार ने ये सोच के
जी
कि अगर सियासत ने एक कौम पे जुल्म किया है, हादसा हुआ और बट गया एक मुल्क
जी,
तो उसमें लोगों का क्या कसूर है।
कोई
हिंदुस्तान के वजीर आजम जवाहरलाल का ख्याल था कि इन्हें बसाया जाए और फौरन बसाया जाए
जी,
उनकी इसी सोच ने फरीदाबाद को एक शहर का रूप दिया
जी।
तो मैं उस कौम का हिस्सा हूँ जिनकी जिंदगी उस मोड़ पर जीरो से शुरू हुई
जी।
न रहने के लिए घर था, सच तो यह कि खाने के लिए खाना नहीं था, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, गम, तकलीफ, और कमियां यही जायदाद थी हरिक आदमी की। होश संभाला उस वक्त फिर हिंदुस्तान के साथ साथ में जवान हुआ। शायद इस सब का एक बहुत बड़ा किरदार रहा मेरी जिंदगी में। मुझे सुनने के लिए पाकिस्तान के तमाम जिलों के लोग हमारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे। तो बन्नू, कुहाट, बरदान, लकी, पेशावर, अच्छा। ये तमाम जुबानें स्कूल में बच्चे बोलते थे, हमारे लिए रोज की जुबानें थी और ऐसा लगता था जैसे हम सब की अपनी जुबानें हैं।
तब तो इसका मतलब आपको ये सारी जुबानों का इल्म भी होगा ना?
इल्म नहीं, मेरे खून में है जुबान।
हाँ हाँ।
मेरे जहन में उतरी हुई है,
बचपन से सुना है वो।
इसको मैंने सीखा नहीं, मैंने जिया है।
क्या बात है।
और बड़ा अच्छा लगता था जब कोई बच्चा साथ सहपाठी कोई क्लास फेलो आकर अपनी जुबान पे कुछ पूछता था, अच्छा लगता था उसकी जुबान में उससे बात करने का।
क्या बात है, क्या बात।
इसलिए फरीदाबाद अपने आप में ये एक तारीख का हिस्सा है। हम लोगों ने, मेरे घर में उर्दू थी, मेरे जो वालिद साहब हैं
जी,
तो जब पाकिस्तान से यहाँ आए तो उनकी तालीम सारी उर्दू में हुई थी।
अच्छा।
और उसकी वजह से पंजाबी होते हुए भी उर्दू जुबान की जो शीरी है, जो इसकी इसका दम है जो
जी जी,
तो देखने को और सुनने को मिला
जी।
और बचपन के साथ ही ऊपर बढ़ता चला गया। फिर फरीदाबाद में कुछ बाहर के लोग
जी,
मुझे याद है अदबी संगम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब के बहल साहब एक कारखाने में मैनेजर थे।
ये संगम का जो जिक्र किया, ये संगम क्या है ज्योति साहब?
अदबी संगम शहर की पहली अदबी तंजीम है, जिसमें जनाब के बहल साहब जो एक फैक्ट्री में बहुत बड़े
अच्छा, अच्छा, अच्छा,
खुद एक सोशल वर्कर भी थे, उन्होंने बुनियाद रखी इस अदबी संगम की, जिसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी तमाम जुबानों के शायर और अदीब आते थे, शिरकत करते थे। और मज़े की बात यह है कि ये बैल साहब का, उनकी शख्सियत का कमाल है कि हिंदुस्तान की बहुत बहुत अदबी, बड़ी अदबी हस्तियाँ
जी,
वो सब अदबी संगम में आई और हमें बचपन में ही उनकी सोहबत का, उनके पास बैठने का मौका मिला
जी।
तो कोई अजीब बात नहीं है जब शायरी या अदब धीरे धीरे अपनी ओर खींचता रहा
जी,
उनसे कुछ मिलता रहा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे हासिल करने के लिए, उसे कबूल करने के लिए तैयार थे।
क्या
मिल रहा है, इसे ले लिया जाए, रख लिया जाए, इसे जो लिया जाए।
बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई में ज्योति साहब, आपने बड़े अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में वो इल्म सीखा कि जिसको सीखने के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, और ये तो खुदा की तरफ से आपको एक सौगात के रूप में हासिल भी हो गया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे साथ मेहमान हैं ज्योति संग, और जैसा कि दोस्तों आपसे मैंने जिक्र किया था कि हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने कहानी, एक संग्रह है उनका पहला उड़ने वाला घोड़ा, उसके बारे में भी जिक्र किया था। संघर्ष बदला मैं चांद पे क्यों जाऊं, ये प्ले थे उनके, और एक कहानी थी फलक की दहलीज पर। और ये तो मैंने आपको जितना मुझे याद है बताया है, लेकिन बहुत कुछ बताने वाले हैं हमारे मेहमान ज्योति संग साहब। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, ये जो कहानी संग्रह है पहला उड़ने वाला घोड़ा, ये नाम ही अपने आप में एक सवालिया है कि इसमें आखिर होगा क्या। तो हम जानना चाहते हैं कि मुख्तसर सी बात हमारे दोस्तों को आप बताएं।
देखिए, कहानियाँ लिखते वक्त
जी,
बेसिकली कोई भी लेखक है, राइटर है
जी,
मेरा अपना ख्याल है कि कोई आदमी एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं लिखता है
जी।
लिखने का एक मकसद होता है और एक पैगाम होता है जिसे राइटर देना चाहता है अपने
जी,
पढ़ने वालों को
जी।
पहला उड़ने वाला घोड़ा, ये टाइटल अपने आप में, और ये कहानी जब मेरे जहन में आई थी तो उसके सामने एक बात थी। इस कहानी के जो पात्र हैं, चांद, बाज, सांप, घोड़ा, तो मुझे किसी ने कहा कि एक कहानी इन पात्रों के साथ किस तरह बांध के रख पाएगी लोगों को, कहीं इसमें कोई वो जो जादू को खिंचाव, चाम, कुछ भी तो नहीं हो सकता, बड़े सीधे साधे कैरेक्टर हैं
जी।
लेकिन राइटर अगर चाहे तो ऐसे रिस्क ले सकता है।
हाँ।
तो मैंने चांद, बाज, सांप, इन तमाम लोगों को लेके सामने ये कहानी लिखी।
अच्छा, तो
कहानी के सामने सिर्फ एक ही बात थी कि जिंदगी में रिवायतों, परंपरा को मानकर अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देने से अच्छा है आप परंपराएं तोड़ें, अगर उससे आपके समाज का, आपकी कौम का, इंसानियत का भला हो सकता है।
क्या बात है, बहुत खूब।
और मैंने इस कहानी के जरिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, परंपरा हमारा सम्मान हो सकता है, परंपरा पे हम नाज कर सकते हैं, लेकिन वक्त के बदलते हुए हालात के साथ अगर परंपरा कहीं कुछ नुकसान कर रही है जो आज के वक्त को के लिए वो सूट नहीं करती, हमें उससे अलग होने में, उससे दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वक्त की आवाज़ अगर चाहती है हम कुछ नया लाएं, नया करें, नया कहें। और पहला उड़ने वाला घोड़ा का मकसद सिर्फ यही था कि एक घोड़े को अगर पंख,
हाँ मैं यही जानना चाहता हूँ, ये जो घोड़े का आपने जिक्र किया है इसमें, ये पहला उड़ने वाला घोड़ा, ये पहला और उड़ने वाला घोड़ा,
जमीन पे घोड़ा एक ताकत का, बल का प्रतीक माना जाता
है। बिल्कुल प्रतीक है।
लेकिन घोड़ा आपने कभी देखा भी होगा, एक मरा सा घोड़ा जो चल नहीं सकता,
जी
जो खड़ा नहीं हो सकता, उसमें ना उसकी आवाज में खनक है, ना उसके पाँव में वो ताकत है, ना वो रफ्तार है। तो घोड़ा जो शक्ति और बल का प्रतीक होने के बावजूद कमजोर से आप देख सकते हैं। तो मैंने उस बात से हट के न सिर्फ उसे बल और शक्ति और रफ्तार का प्रतीक रखा ही रखा, बल्कि उसको पंख दिए कि उस चांद तक जाए उड़ के।
क्या बात है, क्या बात है।
और जाके साबित करे कि अगर मन में तमन्ना है, दिल में जज्बा है, कुछ कर मिटने की तमन्ना है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं।
क्या बात है, क्या बात है ज्योति साहब। तो रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं आपका दोस्त फेमस को, और जैसा कि दोस्तों इस महफिल में हमारे आज के मेहमान हैं ज्योति संत साहब, और ज्योति साहब ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपने कलाम के बारे में भी जिक्र किया है, लेकिन बात चल रही थी उनकी कहानी पहला उड़ने वाला घोड़ा, इसके बारे में तो उन्होंने बड़े ही अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि वो घोड़ा कौन सा था। लेकिन चलिए अब एक और कहानी है उनकी कि जिसका नाम है फलक की दहलीज पर। इस कहानी के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरी कहानी तो इस वक्त आपको सुनाना पॉसिबल नहीं है, और बताएंगे वो खुद ही कि इस कहानी के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं फलक की दहलीज पर।
दोस्तों हर चीज़ जिसका आगाज होता है उसका एक अंजाम भी हुआ करता है।
जी
अगर आप गौर से देखें तो पहला उड़ने वाला घोड़ा फलक की दहलीज पर,
क्या बात है।
ये अपने आप में एक एक, एक मुकम्मल
हो रही है, सही बात है।
और जिस घोड़े को, जिस ख्वाबी घोड़े को
जी
मेरे ख्वाबों ने जन्म दिया, मेरे विचारों ने जन्म दिया, जिस पे बैठ के मैंने अपने आप को जमीन से चांद तक उस तक पहुंचाया, सफर किया, लेकिन चांद तक जाने से बात खत्म तो नहीं होती। सवाल होता है चांद तक क्यों गए, क्यों जाना था हमें, क्यों इतनी मशक्कत की, क्यों हमने इतना जोर लगाया कि हमें चांद पर पहुंचना है। तो ये घोड़ा जब चांद पर पहुंचा तो मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई दास्तान शुरू हुई।
क्या बात है।
पंखों की ताकत, परवास हमें चांद तक ले जाए, फिर हम वहां जाके बैठ जाए ना। मजा तो यही है कि चांद भी देखे एक और चांद आया है मेरे पास।
क्या बात।
चांद भी देखे कि मेरी रोशनी में कोई तब्दीली आ गई, चांद को महसूस हो कि अब तक तो सिर्फ मैं था, अब मेरे अलावा भी कुछ है यहाँ पे।
क्या बात है दोस्तों। वाकई में हमारे जो मेहमान हैं ज्योति संत साहब की जो गुफ्तगु है, उस गुफ्तगु से तो भाई मुझे यही महसूस हो रहा है कि आज हमारे स्टूडियो में कोई चांद निकल आया है, और उस चांद का नूर पूरे फरीदाबाद में चमक उठा है। लेकिन चलिए फिलहाल उन्होंने बता दिया है फलक की दहलीज के बारे में। लेकिन दोस्तों देखिए, एक जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, वो अपने दिल के जज्बातों को शब्दों के जरिए पेपर पे उकेर देता है, और ऐसा ही कुछ लिखा है आज के हमारे मेहमान ज्योति संत साहब ने। ज्योति साहब आपने जिक्र किया था अपने कुछ पिले जो आपने लिखे हैं, जैसा मुझे याद आता है संघर्ष नाम का एक पिले था आपका, उस संघर्ष नाम का जो पिले था उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपसे।
संघर्ष प्ले मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बहुत नज़दीकी की बात है, मेरी बड़ा संवेदनशील मसला है।
जी
जनाब सफदर हाशमी जो थे
जी,
वो बहुत बड़े खूबसूरत ड्रामा निगार थे, एक्टर थे, और ड्रामा की दुनिया में अपने आप में एक हस्ती थे
जी सफदर हाशमी सर।
और जैसा कि लोग जानते हैं कि एक दिन एक नुक्कड़ नाटक करते वक्त लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया उस ग्रुप पे, और सफदर हाशमी साहब की मौत हो गई। मैं बहुत बड़ा लेखक शायर तो नहीं था, लेकिन जो चोट मुझे लगी, मुझे लगता है
उस हादसे से जी,
वो मेरे लिए मैं सो नहीं पाया रात तक। और आप को अजीब सा लगेगा, मेरे एक दोस्त है यूसुफ किरमानी साहब
जी,
जो आजकल एक अखबार के बहुत बड़े अधिकारी हैं,
क्या
उन्होंने मुझसे कहा ज्योति यार बहुत लिखते हो, सफदर की मौत पे कुछ लिखा जाए। और मैंने तमाम पूरी रात जाग के एक प्ले संघर्ष लिखा जो सफदर की जिंदगी पे था, और हमने अगले दिन वो ड्रामा जो फरीदाबाद का जो ऑडिटोरियम है अधूरा था, बना नहीं हुआ था, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था, तो हम लोगों ने आनन फानन में कुछ लोग इकट्ठे किए जो साथी थे, जैसा भी हो सका, और शाम को तकरीबन 400 लोगों की हाजिरी में सफदर हाशमी की जिंदगी पे वो प्ले संघर्ष खेला गया। उस प्ले में सिर्फ एक ही बात थी, और जो बात उस डायलॉग था उसमें, सफदर हाशमी कहते हैं कि सफदर हाशमी मर गया, कौन कह रहा है ये? सफदर कोई इंसान नहीं था, सफदर एक संस्था थी।
क्या बात है,
एक विचारधारा थी। बस हुआ ये कि एक विचारधारा ने दूसरी विचारधारा पर हमला किया, हमला चूंकि पीछे से हुआ
पीछे
था,
से हुआ।
पहले वाली विचारधारा लड़खड़ा गई, गिर गई, तो गिरने के बाद जमीन पर उसका चेहरा पत्थरों से खून से लबरेज हो गया, और लहूलुहान विचारधारा जब उठी और दहाड़ती हुई जब अपनी मंजिल मकसूद की तरफ भागी, तो जहां जहां खून के कतरे गिरते गए वहां एक नया सफदर हाशमी पैदा हुआ।
क्या बात है, बहुत खूब।
और इस तरह से सफदर हाशमी मरा नहीं करते, सफदर हाशमी जिंदगी के हर मोड़, हर चौराहे, हर गली, हर पत्ते, हर पेड़ में हैं। हमें उनको महसूस करना होगा, और जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक जमीन रहेगी, जब तक सफदर हाशमी इस मुल्क को जगाते रहेंगे, यही हम कहना चाहते थे उस संघर्ष के नाते।
क्या बात है, क्या बात है, आपने कितनी खूबसूरती से बताया है सफदर हाशमी साहब के बारे में। कहते हैं दोस्तों कि खिले जो एक दरीचे में आज हुस्न के फूल, तो सुबह झूम के गुलजार हो गई अक्सर।
वाह।
खिले जो एक दरीचे में आज हुस्न के फूल, तो सुबह झूम के गुलजार हो गई अक्सर, जहां जहां भी गिरा नूर एक निगाहों से। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनके खून का एक एक कतरा जमीन के गोद में गिरा, वहां से एक नया सफदर हाशमी शुरू हो गया। तो ये अपने आप में वाकई में एक ऐसी चीज़ है कि इंसान इन्हीं बातों से बहुत कुछ सीख सकता है, और जो आपने लिखा है संघर्ष में, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और वाकई में ज्योति संग साहब का संग हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहला उड़ने वाला घोड़ा, कहानी संग्रह के बारे में आपने सुना, संघर्ष इस प्ले के बारे में भी आपको बताया, फलक की दहलीज पर इस कहानी संग्रह का भी जिक्र आपसे हुआ। लेकिन मेरे दोस्त, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योति संग साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत एक किताब लिखी है, जिसको उन्होंने नाम दिया है खूबसूरत खलिश। अब ये खूबसूरत खलिश में उन्होंने क्या क्या लिखा है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो ज्योति साहब, हम जानना चाहेंगे ये जो खलिश है, और खूबसूरत खलिश है, क्या बात है, नाम ही अपने आप में खूबसूरत है, तो इस खलिश के बारे में बताना चाहेंगे ज़रा हमारे दोस्तों को आप?
जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना जाने क्यों खलिश दर्द, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोग सोचते हैं शायद ये नेगेटिव है।
हाँ हाँ।
लेकिन मेरा अपना ख्याल है
जी
कि खलिश को अगर हम एक खास नुक्ता निगाह से देखें, अगर खलिश मेरी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली ले आए कि मैं मुड़के जीना चाहूँ, एक ऐसी खलिश जो मुझे एक ऐसे कोने की तरफ इशारा करे जहाँ से उम्मीदें जागती,
इतनी
खूबसूरत यादें हों वहाँ पर कि मुझे लगे कि ना अभी बहुत कुछ करना है।
क्या बात।
मेरी वो यादें, मेरा वो जिंदगी का हिस्सा, वो कोना, वो मोड़, जो शायद जिसे लोग खलिश कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो कैसी खलिश हो सकती है जो मुझको जिंदगी दे रही है। इसलिए वो खूबसूरत है, बल्कि किसी भी खूबसूरत से ज्यादा खूबसूरत है कि उस खलिश ने मुझे रास्ता दिया।
क्या बात है।
मुझे वो हिम्मत दी, हौसला दिया।
क्या बात है।
एक नई दिशा दी, एक नई ताकत दी। इसलिए खूबसूरत खलिश मेरी उन नज़मों का मजमू है, उन गज़लों का, जो मैंने बहुत पहले अपनी जवानी की उम्र में, कॉलेज के वक्त में और कॉलेज के बाद लिखा, और अच्छे उस्ताद थे
जी।
मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे एक टीचर थे हिंदी के, चरणदास गुलाटी जी। अगर चरणदास गुलाटी मेरे हिंदी के टीचर ना होते पांचवी में, मैं शायद कविता कभी ना लिख पाता। मुझे याद है मैंने कविता लिखी स्कूल में, एक टीचर थे, पीटी वगैरह के टीचर थे, उन्हें सुनाई तो बड़े गुस्से हुए, क्या करते हो तुम, इम्तिहान पास है और तुम कविताएं लिखते हो।
अच्छा, आपको डांट दिया?
और मैं रो रहा था। गुलाटी जी ने आके रोका, बोले नहीं। और उन्होंने तारीफ की और अगले दिन वो कविता स्कूल की प्रेयर में सुनाने के लिए मुझे कहा और वहाँ से शुरू हुआ ये दौर लिखने का। तो मैं उसके बाद लिखता चला गया। खूबसूरत खालिश मेरे लिए मेरे जिंदगी के वो पड़ाव हैं
जी,
जो साल दर साल आगे चलते रहे और मेरी अक्सरियत के साथ
जी
कुछ जोड़ते चले गए
जी जी,
उसे कुछ बढ़ाते चले गए।
क्या बात है,
कुछ वजन देते चले गए।
क्या बात है, खालिश को कितनी अच्छी तरह से आपने समझाया है। लेकिन ज्योति साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो है खूबसूरत खालिश, इसी में एक आपने लिखा है अपना कलाम जिसका टाइटल है हंस के दिखाना होगा। हम चाहते हैं हमारे जो दोस्तों को आप इसके बारे में खुद अपनी जुबानी बताएं।
देखिए, वो जो एक गजल है, उसका शेर है, उसमें बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अब ना इनकार ना ही कोई बहाना होगा।
क्या बात है,
अब ना इनकार
ना कोई बहाना,
ना ही कोई बहाना होगा, दिले बीमार तुझे हंस के दिखाना होगा।
क्या बात है, क्या बात है।
जब भी मचलेंगे मेरे हाथ तुझे छूने को,
जब भी
मचलेंगे
मेरे
हाथ तुझे छूने को
जी,
अरे तेरी धड़कन तो महज एक बहाना होगा।
बहुत खूब, बहुत खूब।
और आगे इसमें लिखा है, अपने कुछ शिकवे शिकायत ही बचा कर रख लो, अपने कुछ शिकवे शिकायत बचा कर रख लो, तुमको 100 बार यहाँ लौट के आना होगा।
क्या बात है,
पहले अपना था मगर अब है अमानत उसकी, पहले अपना था
जी
मगर अब है अमानत उसकी, अब तो इस दिल के भी नाजों को उठाना होगा।
क्या बात है।
उसके आखिर में
जी इरशाद,
बात उनको ही मनाने की नहीं है संग, बात उनको ही मनाने की नहीं है संग, मसला ये है कि खुद को भी मनाना होगा। मसला ये है
क्या बात, खुद को भी मनाना होगा। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त वहीं मस्कू। और दोस्तों, महफिल सजाई है मैंने एक ऐसी कि जिस महफिल में शिरकत फरमा है हमारे साथ हमारे मेहमान ज्योति संग साहब। बातें चल रही हैं, कुछ उनके कलाम के बारे में जिक्र हो रहा है, कभी कुछ उनकी जिंदगी के बारे में भी हम आपसे बातें करते चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक ऐसी उनकी गजल का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जिसका टाइटल है 100 बार मरा हूँ। और वाकई में दोस्तों, जितनी अच्छी तरह से वो तहत में अपनी बात कहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती में उनका तरन्नुम है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं ज्योति साहब के अपना तरन्नुम भी हमारे दोस्तों को सुनाएं।
जी शुक्रिया। अच्छा,
इरशाद।
तारीकी शब में नहीं खाए कभी ठोकर, तारीकी ये शब में नहीं खाई कभी ठोकर, मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा हूँ।
क्या बात है,
मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा हूँ। उसका एक और शेर है,
इरशाद इरशाद।
बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप, बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप, मैं जिल्लत एहसास से अरे 100 बार मरा हूँ।
क्या बात है, क्या बात है।
मैं जिल्लत एहसास से 100 बार मरा हूँ। तारीकी
क्या बात है,
शब में। शुक्रिया
ज्योति साहब मुकर्रर।
तारीकी ये शब, इसी का एक शेर और है, बड़ा खूबसूरत है। तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ, तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ, फिर लोग क्यों कहते हैं, फिर लोग क्यों कहते हैं
क्या?
गुनाहगार तेरा हूँ क्या फिर लोग क्यों कहते हैं गुनाहगार तेरा हूँ।
क्या बात है, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल माहौल को संगीतमय बना दिया। कहते हैं कि जब मौसीकी की बात होती है तो दिल खुश हो जाया करता है, और ऐसा ही खुश हुआ है हमारा दिल, हमारे दोस्तों का दिल। लेकिन जब बात दोस्तों आती है जुबानों की, और ऐसी जुबानें कि जो हम बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऐसी कई जुबानें हैं जो हमारे मेहमान ज्योति संघ को आती हैं। जैसे ज़ुबान की बात करें तो जर्मन भी उनको आती है, उर्दू भी उनको आती है, हिंदी भी उनको आती है, इसके अलावा और भी जुबानें हैं, वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे।
ज़ुबानें न जाने क्यों भी लगता है कि दुनिया एक परिवार है।
क्या बात है।
और अगर हम अपने आप को किसी एक दुनिया के हिस्से में लाके बिल्कुल गूंगा पाए, हम अपनी बात ना कह पाए, किसी की बात ना समझे, तो मुझे लगता है अजीब सी बात है। खुदा ने हमें जुबान भी दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। तो मैंने कुछ तकरीबन 50 मुल्कों में एक हिप्पी की तरह घूमता रहा हूँ
जी,
बहुत घूमा हूँ, शौक था घूमने का। एक मुल्क से दूसरा मुल्क सरहदें पार की, ना जाने कहाँ कहाँ गया
जी।
तो वहाँ जाकर मैं होटलों में नहीं ठहरता था। अच्छा। मैं गांव में जाकर लोगों के पास बस्तियों में रहकर रहता था, और जितनी जुबान जो कुछ सीख सकता था उनकी ज़िंदगी, उनकी कल्चर, उनके रिवाज, उनकी बातें। तो उस मसले में मैं अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, इटली, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ना जाने कहाँ कहाँ घूमा हूँ। एक थैला अपनी
माफ़ी चाहता हूँ ज्योति साहब, आपके बात काट रहा हूँ, लेकिन जैसा आपने बताया कि आपको कई जुबानों का इल्म है, हमारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में भी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मज़हबों के लोग एक साथ रहते हैं, ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। एक हमारे यहाँ राज्य है पंजाब
जी,
और पंजाब राज्य की जो कहते हैं ना पंजाबी जो भाषा है वो सभी को लुभाती है, अपनी तरफ खींचती है। तो मैं चाहूँगा कि, मैंने सुना है कि आपको पंजाबी गीत भी कोई आता है, तो हमारे दोस्तों को पंजाबी गीत से आखिर महरूम क्यों रहने दें हम?
आता नहीं है, बल्कि मेरा लिखा हुआ गीत है, और चूँकि मेरी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है पंजाबी, और मुझे लगता है कि जो आदमी अपनी मादरी ज़ुबान में लिखे, समझ नहीं आता, जर्मन तो सीखा लेकिन ज़ुबान पंजाबी में ना लिखूँ। तो मैंने एक गीत
जी,
मुझे बहुत भाता है गीत, जब भी गाता हूँ तो बड़ा
जी जी।
कुछ बहुत कुछ याद आता है, उसके चंद लाइनें सुनाता हूँ आपको।
अच्छा।
वरिया वे,
क्या बात है,
एक वरी मुड़ के आ, एक वारी मुड़ के आवे वेरिया, एक वारी मुड़ के आ, वे मैनू चंदरी नू फिर परमा, मैनू चंदरी नू फिर परमा, वेरिया वे एक वारी मुड़ के आ। लिखा है चिट्टे लीड़े ते मांग मेरी चिट्टी, चिट्टे लीड़े ते मांग मेरी चिट्टी, विरत तेरा चिट्टा ललारी आवे, ललारी आवे, मैनू अपना तू रंग दे जा।
क्या बात है।
अपना तू रंग दे जावे ललारिया, अपना तू रंग दे जा। और इसका एक बहुत खूबसूरत बंद है जो मुझे बहुत पसंद है
जी,
है पैन पले खे नी पब तर दिनू, पैन पले खे नी पब तर दिनू, विसर गई मैं मेरा था वे कोई आके, वे कोई आके दस दियो मैनू मेरा नाम।
क्या बात है, क्या
दस दियो मैनू मेरा नाम नी अड़ियो एक बारी मुड़ के आ।
क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। अगर आप पंजाब चले गए हो तो वापस लौट के आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके साथ फरीदाबाद में रेडियो मानव रचना 107.8 पर। और आज जो महफिल सजाई है उस महफिल में हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारे मेहमान ज्योति संत साहब। और आपने देख लिया कि जिस तरह से खूबसूरत उनका तहत का अंदाज था, उतना ही खूबसूरत उनका तरन्नुम भी था। चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम आ जाते हैं उस सवाल पर कि जिसका शायद आपको भी इंतज़ार था, और हमारे जो मेहमान हैं वो शायद इस सवाल से बेखबर हैं। वो सवाल ये है कि मैं शेर की शक्ल में पूछना चाहूँगा कि फूलों से लहू कैसे टपकता हुआ देखूँ, आँखों को बुझा लूँ कि हकीकत को बदल दूँ, हक बात कहूँगा मगर ए ज़ुर्रत इज़हार, जो बात ना कहनी हो वही बात ना कह दूँ। अब वो बात क्या है, कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। और बात ये है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का सफ़र आपने तय किया है, इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत आपने पाई है, और आपको सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान से बाहर भी आपकी मकबूलियत है। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, वो सफ़र तय कैसे किया, या इस मकबूलियत के पीछे, इस बात के पीछे वो कौन सा राज था जो आपके दिल में है, वो हम चाहेंगे हमारे सभी दोस्तों को आप बताएं।
देखिए जनाब,
कोई ना कोई प्रेरणा तो ज़रूर होती है। देखिए संत साहब,
बिल्कुल होती है।
हाँ।
मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे याद है मेरे वालिद मरहूम जगत प्रकाश संत जी।
जी,
एक अच्छे अदीब थे, ड्रामा निगार थे, फरीदाबाद में थिएटर की शुरुआत करने वाले वो शख्स। 1952 में जब पहला थिएटर शहर में रंगमंच हुआ, मुझे याद है कि वो डायरेक्टर थे उसके, और मैं 5 साल की उम्र में वहाँ मैंने कृष्ण का किरदार किया था। और तब शुरू हुआ फरीदाबाद का थिएटर की ज़िंदगी और मेरी थिएटर की ज़िंदगी।
अच्छा अच्छा।
और मेरे वालिद मेरे सबसे बड़े स्कूल थे, मेरे टीचर थे, और जिस तरह से उन्होंने मुझे पाला, जिस ढंग से उन्होंने मुझे रोशनी दिखाई,
परवरिश की,
वो मुझे लगता है कि शायद उसके बिना सब संभव नहीं था। बाकी का जो सारा मसला है
जी,
अच्छे दोस्त मिलते रहे,
क्या बात है,
अच्छे उस्ताद मिले। मतलब यकीन मानिए कि मैं अक्सर सुनता हूँ लोग कहते हैं मुझे किसी ने धोखा दिया, ये लोग बड़े आजकल जमाना बड़ा खराब
जी जी जी,
लेकिन सच ये है मुझे आज तक किसी ने धोखा नहीं,
क्या बात है, ये तो बहुत,
ये भी सच है कि सिर्फ दोस्तों की मेहरबानियां रही हैं कि कोई संगीन कोई ऐसी बातें मुझे याद नहीं, जब कोई याद जहाँ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अपनों ने या परायों ने मुझसे कुछ ले लिया हो या मेरे साथ गलत किया। ये तमाम खूबसूरती जो दुनिया में भरी हुई है, जब हर मरहले पे मुझ पे बरसती रही, प्यार मिलता रहा, मोहब्बत मिली इतनी कि समेट ना पाऊँ, इतनी रहम किया लोगों ने, इतनी दरियादिली दिखाई कि मेरा दामन छोटा पड़ता गया, और सब कुछ समेट के ज्योति संग धीरे धीरे कुछ बनता चला गया हूँ। तो मैं अभी बहुत मामूली सी चीज, दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो बहुत कुछ है, लेकिन ये ना चीज अगर आपने कह ही दिया है
ज्योति साहब, यहाँ पर जैसा आपने अभी अर्ज किया कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक जर्रा हूँ। अक्सर हमारे यहाँ पर इस तरह से मेहमान आते रहते हैं, इस तरह का जिक्र या गुफ्तगू होती रहती है, तो जब भी इस तरह की बात आती है तो मुझे एक गंभीर साहब का शेर याद आता है।
ये शायद
वो फरमाते हैं कि जो शख्स तुमसे झुक कर मिला होगा,
जो शख्स तुमसे झुक कर मिला होगा,
जो शख्स तुमसे झुक कर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुम्हारे कद से बड़ा होगा।
वाह वाह।
तो आपने जो अभी अपने बड़कपन का सबूत दिया है कि आप कुछ नहीं हैं, वाकई में जो अच्छे कलाकार होते हैं, जो अच्छे फनकार होते हैं, वो इसी तरह की बात कहते हैं, और वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, ऐसा ही आपकी बातों से भी अंदाज़ा होता है। और बहुत कुछ आपने हमें बताया है, अपने कलाम के बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, और बहुत सारी बातें वो बताई कि जिन बातों से आप अपने कलाम के ज़रिए लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं, चाहे वो बात हो पहला उड़ने वाला घोड़े की, या बात हो संघर्ष की, या बात हो बदला की, या बात हो मैं चांद पर क्यों जाऊं, या बात हो फलक की दहलीज पर जाने की, वो सारी बातें आपने तफसील से बताई हैं, बड़ी खूबसूरती से बताई हैं। लेकिन क्या करें, बातें करते करते वक्त हो चुका है अपने दोस्तों से इजाज़त लेने का। तो आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे, और अपने दोस्तों को आपके ही बारे में, आपके कलाम के बारे में, और बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे। फिलहाल अपने दोस्तों से और आपसे भी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, और इतनी प्यारी प्यारी बातों से हमारे दोस्तों को नवाजा।
मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका, रेडियो मालवटना का और आपके इस खूबसूरत अंदाज का, जिसने मुझे प्रेरित किया कि आज मैं आपसे कुछ कह पाऊँ। शुक्रिया, धन्यवाद।
तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए कि गमों के साए में हंस हंस के जीना, गमों के साए में हंस हंस के जीना, बड़ी मुद्दत में आया ये करीना, समंदर कर दिए मेरे हवाले, बना कर मुझको कागज़ का सफीना। खुदा हाफिज़, नमस्कार।